राव, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धास जी महाराज द्वारा दिनांक 29 नवंबर 1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद सुजानगढ़ में हुआ। राव
रखने की होती है और एक सजगता होती है। याद रखना भी बहुत अच्छी बात है तो तू सजगता रहनी बहुत बढ़िया है। याद रखने में मन की बुद्धि की वृत्ति होती है खास, सजग रहनी फिर स्वयं में होती है। इतनी विशेषता है। जैसे अभी चारों तरफ हम सुजानगढ़ में हैं, ये बात होगी ना, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ना माला जपने की जरूरत है। भीतर से भीतर बैठी हुई बात है तो सजगता होगी। ये अचानक ये बात होगी, नींद खुले तो भी हम सुजानगढ़ में ऐसी बात आएगी, तो ये सजगता कहते हैं इसको। जागृति जागृति है मेरे सी, ऐसे जागृति रहनी चाहिए। मैं भगवान कहूं ये याद करना नहीं, याद करना तो सुगम भी है और लाभ भी ज्यादा नहीं है और कठिन भी है, दोनों बातें। मन याद हो जाए तो याद रखना सुगम है और नहीं तो याद किए बिना कठिन है। और सजगता है वो एक विषय की मान्यता होती है, वो मान्यता है वो बहुत बढ़िया रूपये लाभ ज्यादा है। जैसे किसी को कहेगा तुम्हारा ब्याह हो गया तो पता करे कहाँ ब्याह हो गया, सोचना नहीं पड़ता। अब अमुक आदमी मिला था तो सोचे कब मिला भाई, हाँ यो हाँ मिला वही सोचेगा समय कब मिला, गए साल पैसे उस मिला। तो ये याद होती है ऐसी, तो याद है स्मृति से भी वो सजगता है, वो बहुत बढ़िया चीज है। तो मैं भगवान का हूँ ये भीतर से स्वीकृति हो जाती है ना, वो सजगता होती। जैसे साधु हो जाए कोई, तो साधु हो गया मैं तो भीतर से एक भाव बन जाता है, वो स्वप्न में भी साधु देखता है अपने को, मैं साधु हूँ। तो वो भीतर में बात बैठ जानी चाहिए, मैं भगवान का हूँ मानने की बात कहते हैं ना। मानने का मतलब है स्वीकार, मानने का एक मान ली बात, मानने में स्वीकार नहीं की। सत्संग की बात सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं, मैं स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर रही भीतर से, अब ऐसे ही करेंगे, अब तो ऐसा ही हमारा जीवन होगा, अब ठीक निर्मल ऐसे ही बनेंगे हम तो ऐसे ही, ऐसे स्वीकार कर रहे। तो स्वीकार की भेद जागृति रहती है, वो स्वतः याद रहती है, वो माला जपनी नहीं पड़ती है, उसमें जागृति रहती है। तो दूसरे लोग सत्संग की बातें उनको जप कर देते हैं, याद कर देते हैं। याद करना जप करना भी बड़ा अच्छा है, परंतु वास्तव में स्वीकृति होनी चाहिए, उसकी जागृति रहनी चाहिए, तो उस आचरण शुद्ध होता है स्वतः स्वाभाविक। जैसे आपके घर की लड़की है, आजकल की बात तो क्या करें, कह रहे कि नहीं है लड़की है, वो ब्याह होने के बाद में उसका भाव बदल जाता है। ससुराल जाती है तो लड़की थी तब खेलती थी ऐसे ही खुली, पर वो भेड़ होने पर घूंघट रखती है, धीरे बोलती है, हरे से बोलती नहीं है, ये सब एक रात में बदल जाते। तो क्या है, ये स्वीकृति है, मैं विवाहित हूँ। पीहर में भी माँ बाप भाइयों के संग ऐसी खेलती है। बालक तो भी रात रात में बड़ी छोड़ी हो गई, एक रात में ब्याह होने से अब कोई बड़ी बूढ़ी हो गई क्या? कुछ बड़ी नहीं, अवसर वैसी है। परंतु भाई खेलते, अरे भाई देख ऐसे कैसे खेलते, तेरे ब्याह हो गया। ठीक है भाई, ये भूल सब समझ जाती है। इसी तरह से ही आप लोगों पर भी जिम्मेवारी है, वो स्वीकृति करनी चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे देखो सत्संग करने वाले, देखो सत्संग करने वाले ऐसा करते, सत्संग करने वाले जी ये अमूल दिखाएंगे और कहीं गई तो बड़ी फजीती होती, हमारी फजीती होती है। तो तुम्हारी सत्संग वाले ऐसे आदमी होते हैं। अब बोलो हम क्या करें बताओ, हमारे कोई बस चलता है क्या? बात सुना देते हैं, उदाहरण हमारे को मिलता है। माई हमारा तो कभी लड़ती है तो कहते झूठ तेरे सत्संग में, ऐसे कहते हैं मेरे साथ कहते झूठ तेरे, अब हमारे सत्संग में झूठ है। तो आप सजीवता रखो और स्वयं स्वीकृति रखो कि हम ऐसा काम कैसे करें। जैसे मैंने युधिष्ठिर की बात कही थी तो यक्ष ने कहा कि भीमसेन का अर्जुन है, इनको जिला लो। वो कैसे याद होगा जीने में? नहीं, युधिष्ठिर कहता है नकुलो यक्ष जीव तू, ये यक्ष नकुला जीव तू, ये नकल नकुल जीव यार। तो कहते हैं तुम विचार करो, तुम्हारे चार भाई ये भाई मर गए हैं तो भीमसेन को जिलाओ अथवा अर्जुन को जिलाओ, तुम्हारे राज्य जिला सकते हैं, समर्थ है, नकुल क्या करेगा? वह कही लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया उसका कि लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, तो धर्म में बात करूं मैं स्वार्थ की बात है, राजद्रोह तो स्वार्थ की बात है और धर्म की बात है। धर्म की क्या है कि हमारी दो माताएं थी, एक माता कुंती एक थी हमारी माद्री माँ। जब संसार में दो भाई हम जी सकते हैं तो प्रथा वंश मैं हूँ प्रकृत नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत्व प्रशंस। कुंती माता मैं हूँ ही मेरे माजा भाई को जीता हूँ, ये धर्म की बात नहीं है, स्वार्थ की बात है। ये धर्म की बात ये है कि दो माता है तो दो हम जी सकते हैं, तो एक एक माता का एक रहे तो माद्री माता का रहना चाहिए ना। कुंती माता हुए हुई इस बात नकुल जी जाए, वो यक्ष बड़ा खुश होगा, सबूत आ जाएगा। तो ठीक है बात, तो लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं, लोगों के चित्त में धक्का लगेगा कि भगत पर युधिष्ठिर भी अपना पक्षपात कर गया। एक माजा भाई को जिया यहां से, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो सत्संग करनियों पर ये बात जिम्मेवारी होती है कि सत्संग करते हो आप, भजन ध्यान करते हो, जप करते हो, तो अच्छा आचरण की जिम्मेवारी विशेष आती है आप पर। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है जो इस बात को आप स्वीकार कर लो कि भाई ठीक है हम सत्संग करते हैं ना, झूठ कपट आदि ठगी धोखेबाजी कैसे करें, करने में शर्म आती है। हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, हम गीता का पाठ करते हैं, सहस्रनाम का पाठ करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। हम भी ऐसा करेंगे तो गीता पर सत्संग पर कलंक लगेगा, कहते वो गीता पढ़ने वाले देखो ऐसा ऐसा आदमी, कहते वो पाठ पूजा करने वाले सत्संग करने वाले ऐसा काम करते हैं। तो इस बात की शर्म आनी चाहिए, दूसरे को तो पता नहीं है, दूसरे लोग तो सुनते भी नहीं है। अब उनसे आशा क्या रखी जाए? आशा तो उनसे ही रखी जाए जो सत्संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आसन अच्छा बनाते हैं, साधन करते हैं। उनसे तो लोग आशा रखेंगे अच्छे बर्ताव की, अच्छी बात की, उनसे ही आशा रखते हैं। और हम भी ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। शास्त्रों पर, सत्संग पर, साधन पर कंक लगेगा। इस वास्ते भाई बहन हरे को ये सजगता रहनी चाहिए कि भाई हम सजग रहे, सावधान रहे, हरदम सावधानी की आवश्यकता है। क्योंकि सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, भगवत जप करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, एकादशी आदि व्रत करते हैं, शास्त्रों का आदर करते हैं तो फिर वर्ण में उनमें क्या फर्क, तो ये फर्क होना चाहिए। तो आपके लिए वो सब में ये आपके पर्दे बन जानी चाहिए, ये बात ऐसी बात है। तो भाइयों को खूब सावधान रहना है, अच्छे तरह से सावधान रहना चाहिए इस बात में। तो हरदम सावधान, पशु सावधान, जैसे पशु ऊंट पर बैठे हुए चलते हैं तो मेरी सुनी हुई बात देखी हुई बात है, जहां ऊंची नीच जमीन होती है तो ऊंट में बैठा हो कहते सावधान सावधान, तो ऊंट ठीक चलता है। जो अपनी भाषा इतनी जानते ही नहीं, वो इतने बड़ी पशुओं पर असर पड़ता है, मालिकों पर पड़ेगा ही। तो सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, वो सावधानी हरदम रहे उसका नाम है सजगता। थोड़े काम में सावधान नहीं, सजगता हरदम जागृति रहे, सोवे तो नींद रहे तो सजग, सावधानी भीतर में सजगता होती है, वो जागृति होती है, तो उस भाव की जागृति रहती है। जैसे बच्चा है तो मैं बच्चा हूँ ये जागृति रहती है, जवान हूँ मैं जवान हो गया हूँ जागृति रहती है, बूढ़ा हो गया तो बूढ़े की जागृति रहती है, जैसे सुहागन हो तो सुहागन पर जागृति रहती है, अगर कोई विधवा हो जाए तो विधवापन भी जागृति रहती है भीतर, एक दो बार नहीं भूल जाए भूलोगे नहीं, भूलती याद रहती है भाई मेरा विधवा हूँ, तो ऐसी जागृति रहे और उसी मर्यादा पर चले, लोग क्या कहेंगे, विधवा होकर कैसे श्रृंगार करे, इसे कैसे कर सकती हूँ मैं, मन में आवे तो भी पुराने जमाने की, वो तो मैं पहले कह दे आजकल के जमाने की बात नहीं कहता मैं, पुराने जमाने में ऐसी मर्यादा थी और आज भी है। यहाँ भी आप देखो तो माता बहनों के ओढ़ना सिर पर देखो प्राय करके है, सर में आप देखो जो खुला सिर हो गया, अब जाकर तो भूषण भूरी सुधा, तो ये मर्यादा है, वो मर्यादा जितनी अच्छी रखोगे उतना अंतरंग शुद्ध होगा, निर्मल होगा, भगवान की तरफ चलने में तत्परता होगी, लाभ होगा, फायदा मिलेगा, मदद मिलेगी। तो मर्यादा ठीक रखना है, उस मर्यादा के अनुसार अपनी स्वीकृति होनी चाहिए, कि हम ऐसा कैसे काम करें भाई, चोरी कर रहे हैं, अरे नहीं हम कैसे कर सकते हैं, झूठ गवाह, अरे भाई झूठ गवाह दे नहीं सकते, झूठ कैसे बोल रहे हैं, हम झूठ हम सत्संग करते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, साधन करते हैं, एकादशी आदि व्रत करते हैं, तो हम कैसे बोल रहे, हमारे से नहीं होगा भाई, ये हमारे से नहीं हुआ, हम कैसे कर सकते हैं। ऐसी सजगता अच्छे पड़े रहने से मर्यादा रहती है और साधन में बड़ी वृद्धि होती है, और बेपरवाह रहने से ठीक नहीं होता। आज ब्राह्मणों में साधुओं में ये सजगता कम आ गई है, ये विचार ही नहीं रहता कि मानो साधु कहते हैं लोग, साधु वेश धारण किया है, भिक्षा देते हैं लोग, तो साधुता कुछ होनी चाहिए ना, नहीं तो लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो सजगता रहनी चाहिए, साधु है, साधक है, सत्संग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, शास्त्रों को पढ़ने वाले, तो हमारी बच्ची कुछ रहनी चाहिए ऐसी, नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पढ़े हो रहा पढ़ो इसमें। तो ये सजगता है, सावधानी है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये नहीं रखने वो गफल गफल कहते हैं, गफल मानो नींद है, वो बेहोशी है, तो होश रहते हर समय भगवान के हम है, हमारे भगवान है। भगत पर आप बताने पर भगवान याद आवेंगे, सजगता हो गई तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारोगे तो मृत्यु समय भगवान याद आवेंगे। हर समय ऐसी सजगता रहेगी कि हम भगवान के हैं तो आप बताने पर भगवान की याद विशेषता से होगी, अभी तो भगवान को भूल जाओगे। जैसे तोता होता है राधे कृष्ण गोपी कृष्ण ऐसा करता है, बिल्ली आते तो सीखी हुई बात है, वो सीखी हुई बात याद नहीं रहती, इतनी भूल जाता है, और सजगता और भीतर बैठी हुई तो भगवान की याद आएगी, तो जीव का कल्याण हो जाए उसके लिए। ये सजगता बहुत आवश्यकता है, इस बात की बड़ी जरूरत है, तो सत्संग भजन ध्यान तप करने वाले, साधन करने वाले, गंगा जी तीर्थ करने वाले, एकादशी व्रत करने वाले, उनमें रहना चाहिए ऐसी सजगता। क्यों हम यूं ये साधारण थोड़े है, मनुष्यों को रहता है किस घराने के हैं हम, किस वंश के हैं, किस समुदाय के हैं, किस संप्रदाय के हैं, तो उनको कलंक लगता है ना, घराने को कलंक लगेगा। साधु बने भी साधु भेष धारण कर लिया, अब भाई इतनी तो रावण हो काल में रावण रहू, ऊपर से मेरे को करे को भीतर में ये बात करी है तो वो साधु थोड़ा ही हुआ, रावण साधु हो गया, काल में साधु हो गया, क्या राहु देवता हो गया, क्या हो तो कपट हुआ हो, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अपने में सदैवता है, ठीक सावधानी, अपना जीवन है वो पवित्र निर्मल होना चाहिए, जहां कहीं कोई बिताएगा तो ठीक कर, नहीं तो कमी का अनुभव करना चाहिए, भाई हमारे में कमी है, ऐसी बात है। तो हरेक भाई के लिए बहुत आवश्यक इस बात की, जो भगवान के हम हैं तो भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, ये सजगता रहनी चाहिए। जैसे गोद चला जाए उसे सजगता रहती है, अपने जन्म देने वाले माँ बाप को इतना नहीं मानता, गोद वाले माँ बाप को अपना मानता है, उस घर का नफा अपना नफा है, मुनाफा है, और उनके घाटा लग जाए तो हमारे हुआ नुकसान, ऐसा होंगे अनुभव करते हैं। ऐसे साधु हो गए तो माँ बाप याद नहीं होते, उसमें ठीक साधु हो जाता है तो भाई गुरु भाई हमारे गुरु जी है, ये है, ये संप्रदाय है, ये याद रहती है। ऐसे साधना की बात यार, साधन मात्र करने वाले साधक हैं, सत्संग करने वाले हैं, उनमें ये बात होनी चाहिए। हम ऐसे दूसरी बात कैसे कर सकते हैं, हमारे से हो नहीं सकता, ऐसे काम पड़ा। एक संत थे, उस बात ऐसी आई तो गाड़ी में चढ़ गई जल्दी के कारण से, तो कुछ क्या कहा बात पर याद नहीं है, मानो झूठ बोल जाओ कुछ ऐसी बात हुई थी, वो भाई ये हमेशा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे ऐसा, साधु थे हम झूठ कैसे बोल जाएंगे, हम से बात सच्ची कहेंगे, बस ऐसी बात है। तो वो डर लगता है, भय लगता है, हम मजा से दूर हम कैसे चले, हम लोग हमारे को क्या कहते हैं, साधु कहते हैं, वेश मात्र धारण से लोग साधु समझते हैं। तो जिस महाराज ने ऐसे कहा है कि भाई मैं अपने भाई को दिलाऊं तो भीमसेन को अर्जुन को तो मेरे स्वार्थ के लिए कैसे दिलाऊंगा, तो धर्मराज थे वो धर्मराज ने परीक्षा ली, तो परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, अंत में जब गए हैं स्वर्गारोहण पर्व में जब जाने लगे हैं, वीर संन्यास या वीर संन्यास, वीर संन्यास ये होता है कि जब मरना है तो चल दिए, बस चलते ही रहे, ना खाना ना पीना ना बैठना ना सोना, चलते ही चलते ही चलते ही चलते रहे, चलते 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 शरीर गिर पड़े थे, बस वो वीर संन्यास है, वो ऐसा वीर संन्यास लिया है। तो द्रौपदी गिरी तो द्रौपदी ने कहा कि भाई आप कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि बिना कोई कसूर मौत मार नहीं सकती, वो असली अपनी मर्यादा छोड़ दे तो उसको मृत्यु दिखानी छी मारती है, नहीं मारती तो मैं गिर रहे हूँ, क्या दोष है, कि दोष तेरे में ये है कि 500 के होते हुए भी तेरे मन में अर्जुन की विशेष पक्षपात थी, इस वजह से तुम गिर रही है, न को तो सदैव गिरेंगे। आप कहते हैं धर्म कोई 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 ना कोई दोष होता, कोई पाप होता तो मृत्यु मरती मृत्यु मार नहीं सकती, क्या बात है। तो तुम्हें स्वरूप का एक अभिमान था कि न को सदैव सुंदर बहुत थे, और एक तलवार का एक सदैव में ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्योतिषी था, तो इसका अभिमान था, उस अभिमान से अर्जुन का अर्जुन गिरने लगा कि मैं क्यों गिरता हूँ, कि तुमने जब वनवास हुआ 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस समय भेजा कि मैं अकेला आकर के विजय करूंगा, तो अकेला नहीं कर सके, सब मिलकर विजय करी, वो तेरी प्रतिज्ञा झूठी हुई, इस राशि तुम गिर रहा है। भीमसेन गिर रहा है, भीमसेन बोला मैं क्यों गिर रहा हूँ, पर्वत में जाते हुए हिमालय में वीर संन्यासन चलते चलते गिर पड़े तुम मर जा मर जा। देखते नहीं बात उत्तर देश देखते नहीं उगर गए कौन गिर रहा है क्या हो रहा है। तो भीमसेन तेरे बल का अभिमान है, तो रे तू भोजन बहुत ज्यादा अन्न बहुत खराब किया है, ख्याल ज्यादा इस बात गिर रहा है। युधिष्ठिर महाराज गए, उनकी बात ऐसी आती हो आया ये विमान आया सामने स्वर्ग से, कहा कि आप इसी शरीर से जा सकते हैं, इस शरीर से नहीं जा सकते ऐसा। फिर वो कोई कोई कहते हैं हाथ के अंगूठा गड़ गया, एक पैर का अंगूठा गड़ गया, ये क्यों गड़ गया, तो वहां पर क्या कि एक कुत्ता आया, तो युधिष्ठिर महाराज देखा सामने सामने कुत्ता आ गया, तो कुत्ता चले और मातरी आया स्वर्ग से, तुम्हारा बैठो आप रथ पर, इसी शरीर से आप जा सकते हो और इस शरीर से नहीं जा सकते, तो भाई मैं कुत्ता है मेरे साथ, मैं अकेला कैसे जाऊं मेरे साथ। महाराज कुत्ते को पालने वाला नरकों में जाता है, जो कुत्ता पालन करता है कुत्ता रखता है वो नरकों में जाता है, कुत्ता चले स्वर्ग में जाएगा, तो कुत्ता नहीं जाए तो हम भी नहीं जाएंगे, हमारे साथ है। अब हिमालय है कोरा बर्फ ही बर्फ पड़ा है, कहाँ जिएगा कौन इसकी रक्षा करेगा, मेरे साथ आ गया, लाया मैं नहीं कुत्ता पाला मैं नहीं है, लाया नहीं हूँ, अब आ गया तू तो महाराज ये तो नहीं जा सकते, तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओ हम नहीं जाएंगे, कुत्ता नहीं जाएगा तो डट गए वहां, तो कुत्ता वो धर्मराज बन गया अभी से, कि मैं तुम्हारी परीक्षा दी है कितना ही तुम धर्मात्मा हो, तुम उत्तीर्ण हो गए, अब साथी को कहें छोड़ मेरे साथी है, मेरे साथ आया है। इस तरह से धर्मात्मा होते हैं उनसे आसन होता नहीं, कर कह नहीं सकते हैं हम भाई हम धर्मात्मा है, हम अच्छे आदमी, लोग हमारे को अच्छा कहते हैं, लोगों की दृष्टि में हम अच्छे हैं, तो लोगों पर कितना आघात पहुंचेगा, उनके हृदय पर कितना आघात होगा कि भाई भगत पर पहुंचने का, ये हम तो अच्छा समझते थे, तो ये बात सजगता हरदम अपने धर्म की, अपने भजन ध्यान की, अपने साधक पढ़ेगी सत्संग पढ़ेगी, सजगता हरदम रहनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।